आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है। इसी दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में घटित हुई है। सर्वप्रथम आज विश्वरूप महोत्सव है और आप लोग जानते हैं कि विश्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता थे। तो विश्वरूप बाल्यकाल से परम विद्वान, श्रीमद् भागवत में रुचि रखने वाले और उनके सुंदर मधुर व्यवहार संपन्न, जिससे कि हर कोई वशीभूत हो जाता था। और विश्वरूप श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य आदि की सत्संग मंडली में नित्य प्रति अंश ग्रहण करके श्रीमद् भागवत की चर्चा करते थे, भक्ति पर चर्चा करते थे। और ये विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते ये वस्तुतः बलराम जी के ही अवतार थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार भगवान कृष्ण हैं, उसी प्रकार ये विश्वरूप बलराम जी। तो ये ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आविर्भूत हुए थे। और आज ही के दिन विश्वरूप ने गृह त्याग किया था संन्यास लेने के लिए। इसका कारण था कि जब विश्वरूप की आयु विवाह योग्य होगी तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनके विवाह की व्यवस्था कर रहे थे कि पुत्र बड़ा हो गया है, अब उनका विवाह कर देना चाहिए। और माता पिता को तो ऐसे ही भय रहता ही है कहीं पुत्र सन्यासी ना बन जाए, इसलिए शीघ्र से शीघ्र पुत्रों का विवाह कर देना चाहते हैं माता पिता। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ये दोनों बहुत व्याकुल थे विश्वरूप का विवाह करने के लिए। और विश्वरूप को पता चल गया कि पिता माता इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, विवाह की व्यवस्था। तो उन्होंने अपना निर्णय ले लिया गृहत्याग करने का। तो उन्होंने इसी दिन गृहत्याग किया था। तो विश्वरूप के गृहत्याग करने के पश्चात सची माता और जगन्नाथ मिश्र की जो अवस्था हुई थी, इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में आता है कि किस प्रकार पिता माता अत्यंत व्याकुल हो उठे थे विश्वरूप के विरह में। सची माता तो अचेतन हो गई थी, नीचे गिर गई थी। तब उन पिता माता की अवस्था देखकर चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम था विश्वंभर, और सची माता उनको प्रेम से निमाई करके पुकारते थे, तो निमाई ने आश्वासन दिया था सची माता को और जगन्नाथ मिश्र को कि आप लोग चिंता मत करिए, आपके दो पुत्र थे तो एक पुत्र भगवान को प्राप्त करने के लिए संन्यास ले लिया, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पास हूँ, मैं आप लोगों का यत्न लूँगा, आप लोग चिंता मत करिए। तो इस प्रकार आश्वासन दे के पिता माताओं को समझाया था चैतन्य महाप्रभु ने। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने समझाने पर भी सती माता के मन में एक द्वेष की भावना रह गई थी अद्वैत आचार्य के प्रति, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये अद्वैत आचार्य जो सत्संग चलता था भक्तों का, क्योंकि उस समय अधिकतर लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए थे, केवल अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित आदि कुछ भक्त लोग ही एकत्रित होकर भगवान की चर्चा, भक्ति की चर्चा करते थे, भागवत की चर्चा करते थे। तो सती माता के मन में था कि हमारा पुत्र इनकी मंडली में जाता था, सत्संग में जाता था, तो ये अद्वैत आचार्य ने कुछ हमारे पुत्र को सिखा दिया कि वो घर से भाग गया, इसने गृह त्याग कर दिया। अद्वैत आचार्य के प्रति इस प्रकार वो दोषारोपण करती थी सती माता, जिसके कारण अद्वैत आचार्य के चरणों में उनका अपराध हो गया था। और यही कारण था कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कृष्ण प्रेम बिना मांगे प्रदान कर रहे थे, तो सती माता को उन्होंने कृष्ण प्रेम नहीं दिया, अपनी माता को चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि जब भक्तों ने पूछा तो महाप्रभु ने बताया कि उनका अपराध हो गया है अद्वैत आचार्य के चरणों में, इसलिए वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, और इस अपराध के कारण हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को भी नहीं छोड़ा, अपनी माता ने अपराध किया है इसलिए वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं। तब भक्तों ने पूछा कि कैसे इनका अपराध शालन होगा, सभी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और सती माता कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाएगी, जिन्होंने आपको उदर में धारण किया है वो कृष्ण प्रेम से वंचित रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब तक सती माता अद्वैत आचार्य के चरण में क्षमा प्रार्थना नहीं करती है, उनकी चरण की धूलि नहीं लेती है, तब तक उनका अपराध क्षालन नहीं होगा। और सती माता अद्वैत आचार्य के पास जाकर उनकी चरण धूलि लेना संभव नहीं था, यदि भी सती माता जा सकती थी चरण धूलि लेने के लिए, किंतु अद्वैत आचार्य सती माता को कभी भी अपने चरणों की धूलि नहीं देंगे। इसलिए जब श्रीवास पंडित के घर पर महासंकीर्तन चल रहा था और सभी भक्त लोग आनंद से कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते एक बार अद्वैत आचार्य अचेतन होकर नीचे गिर पड़े, उनमें प्रेम का विकार उत्पन्न हुआ, सात्विक भाव का उदय हुआ, वो अचेतन होकर नीचे गिर पड़े। उसी अवसर पर सती माता ने उनके चरणों की धूलि लेकर इस अपराध के लिए अपराध का क्षालन किया, तब जाकर वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हुए। तो जो भी हो, आज के दिन वही विश्वरूप ने सन्यास लेने के लिए गृह त्याग किया था और बाद में सन्यास लेने के पश्चात विश्वरूप का सन्यास नाम हुआ शंकरारण्य। शंकरारण्य का देहांत पंडरपुर में हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और तीर्थ स्थानों का दर्शन कर रहे थे, तो उस समय उनको श्रीरंगपुरी से समाचार मिला था कि जगन्नाथ मिश्र का पुत्र विश्वरूप, जिन्होंने सन्यास लिया था और जिनका सन्यास नाम शंकरारण्य था, उनका उनको सिद्धि प्राप्त हुई पंडरपुर में। तो ये समाचार चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हुए थे। अब प्रश्न उठता है कि यदि विश्वरूप बलराम के अवतार थे या बलराम थे, तो फिर नित्यानंद प्रभु की स्थिति क्या है? वो भी बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुत हैल सही बलराम हैल निताय। तो ये भी सत्य है कि नित्यानंद प्रभु भी बलराम ही है और विश्वरूप भी बलराम है। तो जब विश्वरूप ने सिद्धि को प्राप्त की पंडरपुर में, शरीर त्याग दिया, तो शरीर त्यागने के बाद विश्वरूप आकर नित्यानंद प्रभु में मिल गए। तो इस प्रकार बलराम जी सदा सर्वदा, जब नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु मिले नहीं थे, उस समय बलराम जी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे नवद्वीप में विश्वरूप के रूप में। और बाद में जब नित्यानंद प्रभु मिलने जा रहे थे, उस समय विश्वरूप शरीर त्यागने के बाद आकर मिल गए नित्यानंद प्रभु में, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का मिलन बाद में हुआ। तो आज इस अवसर पर हम भगवान विश्वरूप का स्मरण करते हुए उनसे उस कृष्ण प्रेम की प्रार्थना करते हैं, जिस कृष्ण प्रेम का वितरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तजनों को और अभक्तजनों सभी को प्रदान किया था हरिनाम के माध्यम से। और इस कृष्ण प्रेम प्रदान करने का जो भंडारी हैं, भंडार घर के रक्षक, उनको भंडारी कहा जाता है। तो कृष्ण प्रेम के जो भंडार हैं उसके रक्षक थे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद बलराम, और वही विश्वरूप है। तो इसलिए विश्वरूप की कृपा की आवश्यकता है उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, बलराम जी की आवश्यकता है, उनकी कृपा की आवश्यकता है। इसलिए हम विश्वरूप जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस कृष्ण प्रेम की प्रेम का आशीर्वाद भिक्षा करते हैं, जिससे कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। जय श्री विश्वरूप की जय। अब और एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना इतिहास में घटित हुई थी आज के ही दिन, ये श्रीमद् भागवत के संबंध में। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, तो ये भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके चले जाने के पश्चात कलियुग का 30 से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हुआ था। और उसी समय महाराज परीक्षित अभिशप्त हुए और गंगा नदी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ ये भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में हुआ था। हमारे श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि अष्टमी है, भाद्र शुक्ल अष्टमी, उसके बाद वाले दिन नवमी, दूसरे दिन से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई और 7 दिन तक चली थी कथा। आज 7वां दिन है, पूर्णमासी का दिन 7वां दिन, और श्रीमद् भागवत आज ही संपूर्ण हुआ था। इसलिए आज के दिन को भागवत जन्म के रूप में पालन किया जाता है। इसलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो इस भागवत ग्रंथ जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी है और मानव समाज के कल्याण के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को या परीक्षित के माध्यम से इस भागवत की कथा सुनाई थी सारे मुनि ऋषियों को जगत के कल्याण के लिए। तो उसी भागवत को जगत के कल्याण के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से और एक महाभागवत हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्तिवेदंत स्वामी प्रभुपाद महाराज, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया आज ही के दिन। संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य एकमात्र अपने जीवन को भागवत की सेवा में समर्पित करना है, काय मन और वाक्य से। जो सन्यासी होता है वो श्रीमद् भागवत के प्रति, भगवान के प्रति काय मन और वाक्य से समर्पित होता है। और जब तक ये समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक भागवत का प्रचार करना भी संभव नहीं होगा। इसलिए एक तो ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत का प्रचार भक्त भागवत के द्वारा होता है। तो भक्त भागवतों में हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज, वे जब गृहस्थ आश्रम में थे, आप लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम कलकत्ता में श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के साथ उनका साक्षात्कार हुआ था, उनकी भेंट हुई थी। और प्रथम भेंट में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने उनको आदेश दिया था कि हमारे वैदिक शास्त्र गीता भागवत को अंग्रेजी में अनुवाद करके विदेश में प्रचार करने के लिए। ये उनका प्रथम आदेश और उपदेश था। किंतु उस समय प्रभुपाद जी महाराज ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। किंतु बाद में जब प्रभुपाद प्रयाग में प्रयाग फार्मेसी की स्थापना की थी और प्रयाग में ही रह रहे थे, और दूसरी बार श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर से उनकी भेंट हुई, तो दूसरी बार भी श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर वही एक ही उपदेश श्री प्रभुपाद को देने लगे कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विदेश में जाकर भागवत का प्रचार करने के लिए। तब जब दोबारा ये आदेश प्राप्त हुआ तो प्रभुपाद जी महाराज ने उसको गंभीरता से ग्रहण किया कि ये साधु बार बार मुझे वही एक ही उपदेश दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो मुझ में कुछ सामर्थ्य देख रहा है, यद्यपि मैं अपने को इसके लिए समर्थ नहीं मानता हूँ, फिर भी ये साधु कुछ मुझ में ये सामर्थ्य देख रहे हैं कि बार बार मुझे उपदेश दे रहे हैं। तब प्रभुपाद ने गंभीरता से इस पर सोचना प्रारंभ किया और वही प्रयाग में ही उन्होंने श्रील भक्ति संत ठाकुर से दीक्षा भी ग्रहण की थी। और इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभुपाद जी अपने बिजनेस में लग रहे थे और उनका बिजनेस बढ़ रहा था। उसके साथ साथ प्रभुपाद जी बीच बीच में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो संस्था गौड़े मठ की सहायता भी कर रहे थे। और एक बार उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पत्र लिखा था। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शरीर त्यागने से पहले प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था अपने गुरु महाराज के पास, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि गुरु महाराज मेरे लिए आपका क्या उपदेश है, क्योंकि वो जानते थे कि गुरु महाराज शरीर त्यागने जा रहे हैं, इसलिए उनसे अंतिम उपदेश प्राप्त होना चाहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पत्र के माध्यम से पुनः उसी बात को दोहराया कि गीता भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद करके विदेशों में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद दृढ़ निश्चित हो गए कि गुरु महाराज का मुझसे यही एकमात्र आशा है कि मैं विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भागवत का प्रचार करूं, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करूं, हरिनाम संकीर्तन सारे नगर और ग्राम में प्रसारित हो। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको गंभीरता से ग्रहण किया, किंतु ये कैसे संभव है वो सोच नहीं सकते थे। वो एक गृहस्थ थे और वो जानते थे कि गौड़े मठ के जो सन्यासीगण, ये लोग भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा प्रेरित होकर लंदन जा चुके थे, लंदन में प्रचार करने का कार्य प्रारंभ कर चुके थे, किंतु वो उसमें सफल नहीं हुए थे। इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं एक गृहस्थ हूँ और व्यवसाय में लगा हुआ हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य कैसे संभव होगा, जब इतने बड़े बड़े सन्यासी गण समर्थ नहीं हुए विदेशों में प्रचार करने के लिए, तो मैं कैसे समर्थ होऊंगा। तो इस प्रकार सोचते हुए अपने व्यवसाय में लगे हुए थे, किंतु कैसे यह कार्य होगा वो सोच नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी के बिजनेस में कुछ हानि होने लगे, लॉस होने लगा। तो प्रभुपाद ने प्रयाग फार्मेसी को बंद कर दिया और लखनऊ में बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला। उन्होंने सोचा कि वहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, व्यवसाय को बढ़ाएंगे। और पहले पहले तो बहुत अच्छा चला व्यवसाय। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वो मेरे जीवन का वो गोल्डन एज था जब अच्छा व्यवसाय चल रहा था, किंतु बाद में व्यवसाय में बहुत हानि होने लगी, लॉस होने लगा। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि प्रभुपाद महाराज जो बिल्डिंग, जो मकान उन्होंने लिया था व्यवसाय के लिए, उसका किराया भी नहीं दे पा रहे थे, और जो लोग काम कर रहे थे उनको भी अपना तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। इस प्रकार की स्थिति आ गई। तो प्रभुपाद ने सोचा कि चलो लखनऊ में इस प्रकार नहीं चल पा रहा है, तो फिर पुनः प्रयाग इलाहाबाद में आकर उन्होंने पुनः वहाँ शुरू किया। किंतु एक बार प्रभुपाद जी वहाँ से गए हुए थे झांसी में प्रचार करने के लिए, वहाँ शुरू कर रहे थे झांसी में, तो उनको समाचार मिला कि प्रयाग में उन्होंने जो व्यवसाय के लिए जो खोल रखा था वहाँ सब चोरी हो गई। जो नौकर लोग थे उन्हीं लोगों ने ही सब सामान चुरा लिया और पैसा जो कुछ भी था सब चुरा लिया। तो प्रभुपाद को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने सोचा, पहले तो दुख हुआ, फिर प्रभुपाद हंसने लगे कृष्ण की कृपा को स्मरण करके। उनको भागवत का वो श्लोक याद आ गया, यस्याहं अनुगृणामि हरिष्य तद् धनसने। भगवान कहते हैं जिस पर मैं अपना अनुग्रह करता हूँ मैं धीरे धीरे उसका धन अपहरण कर लेता, और धन अपहरण कर लेने पर क्या होता है, जो कुटुंबी जन है जब वो देखेंगे कि इसके पास कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है वो धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर चले जाएंगे, उसको पूछेंगे नहीं। जब तक पैसा था तो सभी लोग आसपास मंडराते रहते थे, और जब पैसा नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा, ये संसार का नियम है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि हमारा व्यवसाय में जो हानि हुई है ये अच्छा ही हुआ, मैं बहुत आसक्त था परिवार के प्रति और व्यवसाय के प्रति, धन कमाने के प्रति बहुत आसक्त था, किंतु इसलिए मैं गुरु महाराज के आदेश को पालन नहीं कर पा रहा था। और यह जानकर भगवान कृष्ण ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि हमारी आसक्ति छूट जाए, परिवार से, व्यवसाय से और धन कमाने की लालसा से। तो इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि चलो ये अच्छा ही हुआ, ये कृष्ण की कृपा ही है कि कृष्ण मैं अपनी इच्छा से त्याग नहीं रहा था, अब कृष्ण मुझे बाध्य कर रहे हैं गृह त्यागने के लिए, जिससे कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन कर सकूं। तब वो उस समय इलाहाबाद में प्रभुपाद और उनका लड़का वृंदावन चंद्र वो दोनों रह रहे थे, उनकी फैमिली कलकत्ता में रह रहे थे। तो कोलकाता में प्रभुपाद जी गए, वहाँ बैनर्जी लेन में वे लोग रह रहे थे, तो झांसी से वो गए थे कलकत्ता, और वहाँ देखा कि परिवार की स्थिति भी उतनी ठीक नहीं थी, बहुत सारा बिल्स बाकी था वो लोग नहीं दे पा रहे थे। और प्रभुपाद जी ने सोचा कि यहाँ यदि मैं अपना बिजनेस को चालू रखूं भी और मैं जो भी पैसा कमाऊंगा ये घर वाले सब ले लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा बिल बाकी है और उसको पेमेंट करना है, तो ये घर वाले सब पैसा ले लेंगे, मैं एक केवल पैसा कमाने का मशीन बनकर रह जाऊं, अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी उस समय ऐसे सदा सर्वदा वो चाय पीती रहती थी और प्रभुपाद जी उनको बार बार समझाते थे चाय नहीं पीने के लिए, क्योंकि ये वैष्णव घराने में वैष्णव लोग चाय नहीं पीते हैं, किंतु उनकी पत्नी नहीं मान रही थी किंतु एक बार प्रभुपाद जी बाहर गए हुए थे, जब घर पर आए और अपना भागवत ग्रंथ खोज रहे थे पढ़ने के लिए, वो भागवत ग्रंथ नहीं मिल रहा था। तो प्रभुपाद ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये भागवत कहाँ गया। तो पत्नी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं था चाय पीने के लिए, तो भागवत को हमने बेच दिया और जो पैसा मिला उसे चाय की व्यवस्था की। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए। तो उनमें क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चाय चाहिए या मुझे चाहिए, ये दोनों में तुम्हें एक को निश्चय करना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी ने मजाक में कह दिया कि मुझे तो अब अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि वो चाय नहीं छोड़ सकती, पति को छोड़ सकती है। तो प्रभुपाद ने इसी को भगवान कृष्ण का संकेत मान लिया कि चलो जो भी अंतिम आसक्ति पत्नी से होता है वो भी छूट गया, अच्छा हो। तो प्रभुपाद तुरंत गृह त्याग करके आ गए और आकर झांसी में जब वो लीग ऑफ डिवोटीज का गठन किया था, वो झांसी में रहकर भी यद्यपि अकेले थे प्रभुपाद जी महाराज, और उनके उनके एक दो सहायक वहाँ पर थे जो सामयिक रूप से उनकी सहायता करते थे, और उन्हीं को लेकर प्रभुपाद इतने विशाल मना महामना थे, उनकी चिंता सारे विश्व में कैसे कृष्ण चेतना का प्रचार हो, उस समय भी प्रभुपाद ये सोच रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे केवल झांसी में ही प्रचार करूं या उत्तर प्रदेश में प्रचार करूं या केवल भारत में प्रचार करूं, वो सोच रहे सारे विश्व में कैसे प्रचार करें, इसलिए उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का गठन किया था। किंतु वहाँ पर उनको असुविधा का सामना करना पड़ा। वो जिस मकान में ए लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना उन्होंने की थी, राज्यपाल की पत्नी ने कहा कि यहाँ लेडीज क्लब होगा, यहाँ और कुछ नहीं हो सकता इस मकान में, क्योंकि वो राज्यपाल की पत्नी थी, कुछ भी कर सकती थी। तो प्रभुपाद जी को ये मकान भी छोड़ना पड़ा झांसी में। तब वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर थोड़े दिन के लिए गौड़ीय मठ में भी रहे थे, किंतु गौड़ीय मठ में रहना उनके लिए संभव नहीं था, और उस समय उनको आर्थिक असुविधा भी थी, यहाँ तक कि पहनने के लिए अच्छा वस्त्र भी प्राप्त नहीं हो रहा था, टूटा फूटा वस्त्र पहनते थे। तो वहीं दिल्ली में रहते समय उन्होंने सोचा कि ये बैक टू गॉड हेड जो भगवत दर्शन पत्रिका है उसकी छपाई करेंगे और उसको बेचेंगे, इस प्रकार प्रचार आरंभ करेंगे। तब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तो दिल्ली में ऐसे लोगों से मिलते हुए वो सभी को सुना रहे थे कि उनकी क्या योजना है, कैसे वो सारे विश्व में कृष्ण चेतना का प्रचार करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था, और सोच रहे थे कि कुछ लोग उनकी सहायता यदि करें तो इस कार्य में वो सफल होंगे। तो उनको थोड़ा बहुत जो अनुदान प्राप्त होता था उसी से वो भगवत दर्शन जो अंग्रेजी में लिखते थे बैक टू गॉडहेड वो स्वयं लिखते थे, और छपाने के लिए वो जाते थे प्रिंटर के पास, वहाँ प्रूफ संशोधन करते थे, जब वो छप जाता था तब उसको लेकर स्वयं जाते थे दिल्ली के राजपथ में उसको वितरण करने के लिए, बेचने के लिए। और दिल्ली में इतनी धूप में प्रभुपाद तो एक बार एक बैक टू गॉडहेड वितरण कर रहे थे तो धूप को सहन नहीं कर सके क्योंकि वृद्ध अवस्था में थे, तो उन्होंने वो अचेतन होकर नीचे गिर गए थे और उनका कोई साथी देखकर उनको उठा करके फिर हॉस्पिटल ले गए थे। और एक बार एक गाय ने तो सिंह मार दिया था, वो भी गिर पड़े थे उसी दिल्ली के रास्ते में। इस प्रकार उनको कष्ट उठाना पड़ा था। और वहीं से उन्होंने चिट्ठी लिखा था गौड़िया मठ में, उस समय चैतन्य मठ के जो आचार्य थे तीर्थ महाराज, उनसे भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हम चैतन्य मठ या गौड़िया मठ की ओर से विदेश में जाकर प्रचार करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु महाराज का ये आदेश है। तो उस समय तीर्थ महाराज ने कहा कि आप अभी हमारे मठ में आकर रहो, यहाँ कुछ सेवा करो मठ में, तब फिर हम देखेंगे आपको कैसे विदेश भेजा जाएगा। तो प्रभुपाद को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि ये शायद उतना हमें प्रेरित नहीं कर पाएंगे विदेश जाने के लिए, या व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि गौड़िया मठ में उनकी अपनी समस्या थी उस समय। तो बाद में प्रभुपाद महाराज वृंदावन आ गए दिल्ली से, आकर बंसी गोपाल मंदिर में पहले रह रहे थे और वहीं से फिर दिल्ली सुबह ट्रेन में जाएंगे, दिन भर रहेंगे बैक टू गॉडहेड जहाँ प्रिंटिंग हो रहा था वहाँ प्रिंटर के पास, फिर शाम को ट्रेन में आएंगे। इस प्रकार आना जाना करते थे दिल्ली से, और वो भी बहुत खर्चीला था, बहुत उसमें पैसा खर्च हो रहा था और प्रभुपाद के पास उतना पैसा नहीं था कि ये प्रतिदिन दिल्ली आने जाने का खर्च उठा सके। तो बाद में वृंदावन में एक पुस्तकालय के अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि स्वामी जी आप ये पत्रिका को प्रकाशन के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि लोग पत्रिका को लेंगे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फेंक देंगे, इससे कोई लाभ नहीं होगा, आप ग्रंथ की रचना कीजिए, आप ग्रंथ लिखिए और ग्रंथ सभी के पास रहेगा और ये आपके प्रचार में सहायता प्रदान करेगा। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं ये ठीक है, तो उन्होंने बैक टू गॉडहेड बंद कर दिया। अब वो ग्रंथ लिखने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो उन्होंने सोचा कि मैं यदि विदेश में जाकर प्रचार करूं तो प्रचार के लिए हमारे पास कुछ साधन चाहिए, मैं जाकर केवल प्रवचन विदेश में करने से लोग कृष्ण चेतना को ग्रहण नहीं कर सकते, उनको पढ़ने के लिए उनको विश्वास दिलाने के लिए उनके पास हमारे वैदिक ग्रंथ भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं भागवत जो हमारे वैदिक ग्रंथों का सार है उसका पहले मैं अनुवाद करूं। तो यहीं वृंदावन में रहकर बंसी गोपाल मंदिर में उन्होंने शुरू किया था ये भागवत का अनुवाद, और बाद में बंसी गोपाल मंदिर से वो राधा दामोदर मंदिर में आ गए थे और राधा दामोदर मंदिर में उनको गोस्वामी का संग परोक्ष रूप से प्राप्त हो रहा था क्योंकि वो जीव गोस्वामी और रूप सनातन गोस्वामी आदियों का सत्संग स्थान था राधा दामोदर मंदिर, और वहाँ रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर भी है, तो वहाँ गोस्वामियों का सत्संग होता था। तो जब प्रभुपाद वहाँ रहने लगे तो गोस्वामियों का परोक्ष अनुभव उनको होने लगा और उनका जैसे वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ऐसा अनुभव भी हुआ, और वो नित्य प्रति रूप गोस्वामी के समाधि के सामने जाकर बैठते थे और उनसे कृपा की प्रार्थना करते थे, जिससे कि वो विदेश में जाकर भागवत धर्म का प्रचार कर सके। तो स्वयं हाथ में रसोई बनाते थे और ग्रंथ की रचना करते थे, और फिर जाते थे कुछ अनुदान संग्रह करके उस ग्रंथ को प्रकाश करने के लिए। तो उसी प्रकार दिल्ली में जाते थे और पहला खंड उन्होंने प्रकाशित किया, फिर दूसरा खंड प्रकाशित किया, इस प्रकार तीन खंड प्रकाशित किए थे उस समय। तो जब ये वृंदावन में रह रहे थे उस समय, उसके पहले वस्तुतः गृहस्थ जीवन में उन्होंने दो बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वप्न में देखा था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में आकर कह रहे थे, उनको बुला रहे थे श्रील प्रभुपाद को, और उनको कह रहे थे कि तुम संन्यास ग्रहण करो, क्योंकि संन्यास इसलिए है कि लोग सन्यासियों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। किंतु प्रभुपाद जी महाराज ये स्वप्न देखने के बाद वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में और अपने व्यवसाय में इतने आसक्त थे उस समय कि वो सोच नहीं सकते थे वो सब कुछ त्याग करके संन्यास ग्रहण करें। किंतु उनके मन में ये बात थी कि गुरु महाराज चाह रहे हैं कि वो संन्यास ग्रहण करें, जबकि उन्होंने कुछ इसके संबंध में नहीं किया उस समय। बाद में दूसरी बार भी उसी प्रकार का स्वप्न देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर उनको फिर कह रहे हैं संन्यास लेने के लिए। फिर भी प्रभुपाद महाराज स्वप्न देखने के उपरांत भी और ये जानने के उपरांत भी गुरु महाराज कह रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। किंतु जब घर दर छोड़कर वृंदावन आए और यहाँ ग्रंथ भागवत का अनुवाद कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने तीसरी बार स्वप्न देखा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर कह रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि मेरे पीछे आओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि तुम प्रचार में सफल होने के लिए तुम्हें संन्यास लेने की आवश्यकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था प्रचार के लिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास ग्रहण किया था प्रचार के लिए। इसलिए प्रचार के लिए यद्यपि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना शास्त्र में मना है, किंतु प्रचार के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो जब इस प्रकार उन्होंने स्वप्न देखा, तो प्रभुपाद महाराज सोच रहे थे कि संन्यास ग्रहण करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं ग्रहण करने के लिए, मैं अपने को योग्य नहीं समझता। तो वास्तविक यही भाव सन्यासी का रहना भी चाहिए, जो अपने को स्वयं योग्य ना समझे किंतु गुरु उसको योग्य समझे सन्यास ग्रहण के। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने को योग्य समझते हैं सन्यास के लिए, वो दूसरे लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। कलयुग में वो अपने आप को योग्य समझने लगते हैं। वस्तुतः ये विनम्रता होनी चाहिए सन्यासी, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सन्यासी सदा सर्वदा विनम्र रहे, कभी भी मन में अहंकार को स्थान न दे और गुरु कृष्ण के ऊपर निर्भरशील रहे। तो प्रभुपाद महाराज सोच रहे थे कि मैं तो योग्य नहीं हूँ संन्यास ग्रहण करने के लिए, किंतु गुरु महाराज चाह रहे हैं तो ये अवश्य कृष्ण की इच्छा है। जब गुरु महाराज चाह रहे हैं तो ये कृष्ण की इच्छा है, और इस संन्यास के माध्यम में हो सकता है कि मैं प्रचार करने में समर्थ हूँ। जब इस प्रकार सोच रहे थे तब वो अपने गुरु भ्राता केशव महाराज के पास एक बार गए थे, और केशव महाराज ने भी उनको यही कहा कि भक्ति वेदांत प्रभु आप संन्यास ग्रहण कीजिए तब जाकर आप प्रचार में सफल होंगे, नहीं तो आप गुरु महाराज के आदेश को पालन नहीं कर सकते। तो जब केशव महाराज ने इस प्रकार बार बार अनुरोध किया प्रभुपाद जी को, बार बार प्रेरित किया, और प्रभुपाद अंत में राजी हुए और उन्होंने केशव महाराज से ही आज के ही दिन संन्यास ग्रहण किया था। तो उनका संन्यास नाम हुआ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करके और श्रीमद् भागवत के 3 खंड अनुवाद करके अब विदेश जाने के लिए प्रस्तुत थे, और मथुरा के जो एक अग्रवाल थे उनके पुत्र पेंसिल्वेनिया में रहते थे, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी थी उनके स्पॉन्सरशिप की। तो उनके पुत्र ने भेजा था एक चिट्ठी वहाँ हमारे गृह विभाग को, भारत के गृह विभाग को, प्रभुपाद के लिए कि मैं 2 महीने के लिए एसी भक्तिवेदांत स्वामी के रहने का और खाने पीने का सारा खर्च वहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और प्रभुपाद को ये बात पता नहीं था कि वो जो चिट्ठी गृह मंत्रालय में थी और गृह मंत्रालय से उनके पास चिट्ठी आई। उस समय प्रभुपाद जी दिल्ली में राधा कृष्ण मंदिर में रह रहे थे ये भागवत छापने के संदर्भ में, तो उनके पास चिट्ठी आई, तब जाकर उन्होंने फिर प्रयास किया कैसे वो विदेश जाएंगे, और हम लोग जानते हैं आगे की घटना क्या हुई। तो आज इसी अवसर पर प्रभुपाद महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने सारे संसार में कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, इस भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए इतना कठिन प्रयास किया, इतना कष्ट उठाया, तो वही प्रभुपाद जी महाराज हम लोग पर कृपा कर रहे हैं कि हम उनके उस प्रयास को, उनकी कृपा से हम आगे बढ़ा सकें और सारे संसार में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में अपना योगदान दे सकें। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, जय श्री श्री गौरनिताय की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता देवी की, जय समवेत भक्त वृंद की, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।